اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. والا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. صلوات پڑھے محمد. عزاداران امام، رضوی کالج بامبے کی چھٹی مجلس، سکس مجلس ہے. علی کا شیعہ کون ہے؟ مومن امیر المومنین کی نگاہ میں. مسلسل آپ کی خدمت میں معروض ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ٹاپک بہت بڑی ہے، واسٹ ٹاپک ہے، کہ ایک امیر المومنین کا شیعہ کو ہونا کیسے چاہیے. سورہ مبارک مومنون کی آیت ہے کہ آج مومن فلاح پا گیا، مومن نجات پا گیا، اس لیے کہ امیر المومنین دنیا میں آیا. پہلی مرتبہ اس آیت کی تلاوت میرے مولا نے کی تھی خانہ کعبہ میں، جب آپ کی ولادت ہوئی تھی. مومن بولنا آسان ہے، رہنا مشکل ہے. آسان بات نہیں ہے مومن رہنا. اگر مومن کوئی بن جائے، میں یہ نہیں بولتا کہ کوئی مومن نہیں ہے، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ہر آدمی ٹرائی کر سکتا. ہر آدمی مومن کے جو کیٹیگریز ہیں، جو کوالٹیز ہیں، اس میں کم از کم 90% تو ہم فٹ ہونا نا کوئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. اگر کوئی 30% 20% پہ رہا، ایون دنیا میں کالجز میں ایڈمیشن کہاں ملتا؟ اگر 20-30% کا پرسنٹیج رہا بندے کا تو کوئی کالج میں ملتا؟ بندہ فیل ہو جاتا. منیمم 40-45% ہے نا. اور آج کے زمانے میں تو اسٹوڈنٹس 90% سے کم لاتے بھی نہیں، اور وہی 90% ہوگا تو پھر کوئی لڑکا سمجھ میں بھی آتا. ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی وہی ہے. مومن اگر ہم ریئلی بننا چاہتے تو اس لیول پہ تو آئے. دیکھیے 100% نہیں ہو سکتے، اگر ٹرائی کریں گے تو میں یہ نہیں بولتا کہ نہیں ہو سکتے، 100% بھی ہو سکتے. جیسے آج کے زمانے میں بھی 99% تو ہو ہی جاتا. کتنے ایسے اسٹوڈنٹس کو میں جانتا ہوں جو 98% تک لے کر آئے، میڈیسن میں لے کے آئے، وہ بھی امریکہ کے میڈیکل ٹیسٹ میں لے کے آئے. وہاں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس موسٹ ڈیفیکلٹ ٹیسٹ، تو وہاں پہ وہ لوگ لے کر آئے. انڈیا سے اسٹوڈنٹس گئے تھے یہاں میڈیسن کر کے، پھر وہاں ماسٹرز کرنا چاہ رہے تھے، تو ان لوگوں نے وہاں پہ ریئلی 6 مہینے تک لائبریری جا کے ریئلی دے ہیو اسٹرگل، پھر 90+ لے کر آئے ان لوگوں نے. تو لاسٹ انسان اگر کوشش کرے تو اس پرسنٹیج کے اوپر آ سکتا. تو وہی چیز یہاں پر بھی ہے. مومن آپ ہیں تو کتنے پرسنٹ مومن ہیں، کتنے پرسنٹ، یہ ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ پہلے ہم کو چیک کرنا ہے کہ ہم اس لیول پہ آ رہے. بولنا تو آسان ہے، اس لیے کہ دنیا میں اگر بندہ فیل بھی ہو جائے تو کیسا بھی کسی بھی لحاظ سے سروائیو کر لیتا، لیکن آخرت میں تھوڑی کوئی سروائیو کرے گا. آخرت میں پھر وہ پرابلم شروع ہو جائیں گے، آپ کو وہ چیزیں شروع ہو جائیں گی. اور دیکھیں دنیا میں اور آخرت میں بہت فرق ہے. دنیا کے ایگزامس کی جو میں بات کر رہا، وہ تو پھر بھی انسان کوئی بھی محنت کرے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کالج میں ملے گا. یہاں پہ امیر المومنین کو چھوڑ کے کہیں جا بھی نہیں سکتے آپ، صرف امیر المومنین کا شیعہ بننا ہے. تو آپ کو اس لیول پہ آنا ہے جہاں تمہارا امام تم کو دیکھنا چاہتا. مولا علی اپنے چاہنے والوں کو نیچے کے لیول پہ دیکھنا نہیں چاہتے. مولا علی اپنے چاہنے والوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارنے والوں کو دیکھنا نہیں چاہتے. علی اپنے چاہنے والے کے بلندی کو دیکھنا چاہتا، اس لیے کہ علی کا نام ہی بلند ہے. علی اعلیٰ کو کہتے جو سب سے بڑا ہے. تو پھر وہ ان کا شیعہ، ان کا شیعہ، اس کے لیے آپ کو محنت کچھ نہیں ہے دوستو. یہ جو ایول ورلڈ میں تم ہونا، اس کے ان چیزوں کو چھوڑو کہ جو چیزیں کی وجہ سے تم امیر المومنین کے شیعہ بننے سے دور ہو رہے، چیزوں کو چھوڑنا ہے خالی. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، ٹرائی تو کر سکتے. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ آج کے زمانے میں مشکل ہے. مثال کے طور پہ کوئی میوزک کی بات کرے، کوئی مشکل تو نہیں ہے. ینگ لڑکے لڑکیاں چینج ہو گئے. بامبے کی بات کر رہا ہوں میں کہیں اور کی بات نہیں کر رہا. بامبے جیسے شہر میں छोटी चीज है, आप बोलेंगे इतना पीछा क्यों उठाया म्यूजिक को। अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया, आगे कहा कि मैं बहुत मेरे गुनाह है, गौर से सुनो, बहुत मैंने गुनाह किए, बेइंतहा गुनाह है, मेरी पूरी 5 गुनाहों में गुजर गई। अब मैं ये चाहता कि मैं सही हो जाऊं, कोई एक चीज बताइए जो मैं आसानी से कर लूं। तो रसूल ने एक लिस्ट नहीं सुनाई पूरी कि ये छोड़ ये छोड़ ये छोड़, स्टार्ट करना था तो आपने क्या कहा, झूठ बोलना छोड़ दे। सो सिंपल, कहा झूठ बोलना छोड़ दे। झूठ मिसाल के तौर पे झूठ बोलना, लाई करना किसी को, वो एक झूठ छोड़ेगा तो 10 चीजें छोड़ेंगे उसके साथ, एक झूठ छोड़ेगा तो 10 चीजें छूट जाएंगी उसके साथ। हम मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकते, जोक करते हुए भी झूठ नहीं बोल सकते। आप इंसाफ से बोलो, हम जिसके मानने वाले हैं अमीरुल मोमिनीन के बारे में क्या है, सिद्दीक अकबर। यू नो व्हाट डज इट मीन, सिद्दीक सच बोलने वाला, और ऐसा सच बोलने वाला जो सबसे बड़ा। अली का एक टाइटल है, अमीरुल मोमिनीन का एक टाइटल है, सिद्दीक है अकबर। जैसा अमीरुल मोमिनीन एक टाइटल है आपका, उसी तरह आपका एक टाइटल यह भी है कि आप सिद्दीक है अकबर हैं। तो आप खुद इमेजिन करें, अल्लाह के रसूल ने कोई लंबी स्टोरी नहीं सुनाई कि लीव दिस लीव दिस लीव दिस, कहा स्टार्ट कर रहे ना, झूठ बोलना छोड़ दो। ये साल मुहर्रम है ना, 1437 हिजरी का मुहर्रम की 6 तारीख है। हम मौला हुसैन को गिफ्ट दो, क्या गिफ्ट देंगे आप? पैसा नहीं चाहिए मौला को, कुछ नहीं चाहिए आपको। इमाम ये बोलता कि तुम ये साल ये गिफ्ट दो मौला को कि मौला हुसैन अब तक मैंने बहुत झूठ बोला, आज से जस्ट बिकॉज ऑफ यू, इसलिए कि यजीद झूठा था और आप सिद्दीक अकबर के बेटे थे, तो मैं आज से झूठ बोलना छोड़ दूंगा। कोई तो गिफ्ट दो, रोज अगर एक एक चीज देने लगे तो तुम सही माने में 10 मुहर्रम तक अमीर अल मोमिनीन के शिया खुद ब खुद बन जाओगे। दूसरी चीज जो इमाम के शिया बनना है वो रिस्क है हलाल। मैंने बहुत बोला है रिस्क है हलाल पे, एंड आई एम स्टिल स्ट्रेस कर रहा इस पे, स्ट्रेस कर रहा कि रियल शिया बनना है, वेरी इंपॉर्टेंट, रियल शिया बनना है इमाम अली के। देखिए इमाम अली के 1 करोड़ शिया हैं इस वक्त, दो झूसे के आम शिया आम इमाम अली, इसका मैं शिया हूं, इमाम अली को मानता हूं। मोर देन 1 करोड़ तो कोई बात नहीं बोला, 90 मिलियन तो ईरान में, 90 प्लस पूरा गल्फ, यूरोप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कनाडा सब कॉन्टिनेंट, कहां नहीं है शिया, मिलियंस एंड मिलियंस एंड करोड़ों करोड़ों मिलियंस एंड मिलियंस शिया इस वक्त है। सब वैसी है, होना कैसे चाहिए और हुए कैसे, कई चीजें हैं दोस्तों कि अगर ये चीजों को तुमने छोड़ना शुरू किया, तुमको सीरियसली सोचना है हमको ये 10 मदरसों में, यू हैव टू थिंक सीरियसली व्हाट आई एम सेइंग कि इमाम अली के शिया बनना है या नहीं बनना, पहले ये डिसाइड करो। यू वांट टू बी शिया ऑफ इमाम अली, यू लव इमाम अली, देन यू लीव दिस। मैं पूछ रहा आपसे, इफ यू रियली लव इमाम अली तो एटलीस्ट गिव हिम समथिंग ना, कुछ तो जो। अब इमाम अली की सीरत का एक वाकया पढ़ता आपके सामने कि मौला अली की सीरत क्या थी, उनका कैरेक्टर क्या था। छोटा सा वाकया, फेमस इंसिडेंट है, गौर से सुनना कि उनका नेचर ये औरत मर्द लड़की लड़का सबके लिए मैसेज है कि इमाम अली की जिंदगी का ये पहलू। मैं वाकया पढ़ रहा, उसके बाद हर आदमी चेक करे कि मैं इसमें फिट होता हूं, मैं भी ऐसी करता हूं अपनी लाइफ में या नहीं। मौला अली की जब शहादत हुई, मौला का ताबूत, मौला का कॉफिन कूफे से उनके घर से चला, कहां चला, नजफ अशरफ को। अल्लाह हमको मौला की ज्यारत नसीब करें इंशाअल्लाह। नजफ अशरफ मौला का कॉफिन लेके गए, कौन कौन था, इमाम हसन इमाम हुसैन मौला अब्बास जनाब मोहम्मद हनफिया पूरे उनके बच्चे और मौला के चाहने वाले। मौला का कॉफिन चला नजफ अशरफ में, नजफ अशरफ में मौला को बरी किया, बरी करके आपकी ग्रेव बनी, ग्रेव बन के इमाम हसन लीड कर रहे थे, इसलिए कि अब इमाम इमाम हसन है, इमाम हसन वो ग्रुप को लीड कर रहे हैं। वहां से इमाम हसन नजफ अशरफ से अब चले, माशाल्लाह सब जायरीन है। कूफे से नजफ अशरफ जो है आज भी 12-14 किलोमीटर का फासला है, 12-14 किलोमीटर है। उस जमाने के रास्ते क्या थे नहीं मालूम, रास्ते में आ रहे थे, गौर से देखें, जब रास्ते में आ रहे थे तो इमाम हसन के कानों में और इमाम सबके कानों में, इमाम हसन के साथ जितना ग्रुप था सबके कानों में एक किसी के रोने की आवाज आ रही थी, तड़पने की, बहुत मुसीबत में कोई है, प्रॉब्लम में है, तकलीफ में, पेन में, जबरदस्त कोई पेन में है। छोटे 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 घर थे अरबिक, छोटे छोटे घर, वहां से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। कैसे मालूम हो रहा था, उसके रोने से मालूम हो रहा था कि वो बहुत पेन में है। अब इमाम हसन अली के बेटे, अली के बेटे, फिर बोल रहा हूं अली के बेटे, इतनी बड़ी मुसीबत हो गई, बाप का साया चला गया, हसन आगे एक कदम नहीं बढ़ा, उस आवाज के सिमत मुड़ गए। पहला मैसेज इसमें कि कितनी भी मुसीबत आओ, अगर कोई मुसीबत ज़दा की आवाज आ रही तो रास्ता काटो मत, शिया हो ना, डोंट से कि मैं जाऊंगा तो वो मुझसे हेल्प मांगेगा, ये जहन से निकाल दो कि अगर कोई तुमसे हेल्प मांगेगा, ये क्यों नहीं शुक्र अदा करते कि अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल किया कि तुम किसी की मदद कर सक रहे, ये क्यों नहीं सोचते, हर वक्त नेगेटिव क्यों रहते। इमाम अली का शिया स्ट्रेट होता, अभी मैंने बोला, क्यों ये सोचते कि अरे मैं उसके पास जाऊंगा वो कुछ मुझसे मांग लेगा मुझे देना पड़ेगा। जो लोग ऐसा सोचते ना उनका पैसा इधर उधर इधर खर्च होता, वही मिसाल के तौर पे अगर वो वहां जा रहा तो वो जा रहा नहीं रहमत को लेने जा रहा। इमाम हसन ऐसे टाइम के ऊपर बाप को दफन किया, बाप को दफन करके मेरा मौला पलटा उधर, जब मौला पलटा, अब गौर से सुना, जब मौला पलटा तो मौला के साथ पूरे इमाम हुसैन, मौला अब्बास, जना मोहम्मद, पूरा ग्रुप पूरा वहां पलटा, अंदर घरों की तरफ गए, देखा कि छोटा सा अरबिक हाउस है। गौर से देखें प्लीज मेरी तरफ, अब टाइम कम है, 6-3 मदीसें रह गई है मदीस को छोड़ के, छोटा सा एक घर है, एक रूम है, एक रूम में एक शख्स लेटा हुआ है, ओल्ड है, बूढ़ा है, आंखों का विजन बहुत कम है उसका, बहुत कम है, और इतना ओल्ड है कि पैर और हाथ में ताकत नहीं है, लेटा हुआ है। उसकी जबान पे एक ही जुमला है कि आने वाले तू कहां है, 3 दिन से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, आज 3 दिन हो गए किसी ने मुझे खाना नहीं खिलाया, आज 3 दिन से मैं परेशान हूं तेरी याद में, तू कहां है, तू कहां है। इमाम हसन करीब गए, जाके मौला बैठते, आप ये जहन में रख के सुन रहे कि मौला को दफन करके आने का वाकया है। मौला बैठ गए, इमाम हसन इस्लाम बैठ गए उसके बाजू, पूछा भाई, बड़ी सॉफ्टली, बड़ी प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, एक परेशान है पुकार रहा। करीब गए, करीब जाके पूछा, ये बता तेरी तबीयत कैसी है, तू किसको पुकार रहा। तो कहा मैं बहुत परेशान हूं, मैं भूखा हूं। इमाम ने कहा ठीक है, मैं तेरे खाने का इंतजाम कर देता। उसने कहा कि, और उसकी जबान पे एक ही जुमला है कि आने वाले 3 दिन हो गए आज तू नहीं आया। इमाम ने कहा किसको पुकार रहा, तो कहा कि एक अल्लाह का बंदा था जो रोज मेरे पास आता था, प्लीज गौर से सुनो एक एक जुमला, रोज मेरे पास आता था, मुझे रोटी खिलाता था, मुझे पानी पिलाता था, मेरी खैरियत पूछता था। और इमाम ने पूछा तूने उसका कभी नाम पूछा कौन था वो, तो कहा जब मैं पूछता वो ये कहता कि मैं भी एक अल्लाह का बंदा हूं, कभी नाम बताता ही नहीं था, जब मैं पूछ रहा वो ये बोलता था मैं भी एक अल्लाह का बंदा हूं तेरी तरह, तुझे नाम से क्या मतलब है, तेरी खैरियत पूछने तो मैं आ रहा ना, तुझे रोटी तो दे रहा ना। दोस्तों जब बोलता रहा इसी तरह तो इमाम हसन ने कहा कोई निशानी है उसकी, कोई निशानी है कि जिससे हम उसको लेकर आए। तो वो एक मिनट रुका, वो बूढ़ा, वो अपाहिज, रुक के कहा कि तेरी आवाज उसकी आवाज से बहुत मिलती है।
अल्लाह।
तेरी आवाज उसकी आवाज से बहुत मिलती है। ये मौला तो जानते थे, ये सुनना था, मेरे मौला की आंखों में आंसू आ गए। उसके सर पर ऐसा हाथ फेर के कहा कि अल्लाह के बंदे, वो मेरा बाबा अली था, अब वो कभी नहीं आएगा। मैं आपसे पूछ रहा, रोज किसी की मदद कर रहे, रोज किसी की खैरियत पूछ रहे, लेकिन कभी अपना नाम नहीं कर रहे। मैं क्या बोलूं, ये आज का मेरा बहुत बड़ा मैसेज था। ये इमाम अली के शिया बनना है तो कैरेक्टर ऑफ इमाम अली को देखो, उसके बाद कंपेयर करो कि मेरा कैरेक्टर क्या 1% भी इमाम अली के कैरेक्टर से मिलता है। मैंने अभी परसेंटेज की बात की, आप ऑनेस्टली बताइए मुझे कि क्या कहीं हमारा कैरेक्टर इमाम अली के कैरेक्टर के करीब जा रहा। मैं ये नहीं बोलता किसी का नहीं जा रहा, आई डोंट से दिस, 100% जा रहा होगा, लेकिन हमारी फिगर कितनी बदल रही। कभी हम ये सोच रहे ये पॉइंट को, हमको तो उस वक्त तक काम नहीं करना है जब तक मेरा नाम ना हो जाए। वो कैसे बनोगे इमाम अली के शिया? इमाम अली के शिया के लिए नजात है, खद अफलहल मोमिनून। ये आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, ये अल्लाह बोल रहा कुरान में। मोमिन के लिए नजात है, आप इजी मत लो, बार बार बोल रहा, डोंट टेक इट इजी। नजात ही है जो पूरी हमारी इंडिया की, पूरी ये वर्ल्ड की जिंदगी का एंड जो है वो नजात होना चाहिए। नजात नहीं है तो कुछ नहीं है। इमाम अली का शिया अगर कहीं भी अपने लिए कोई काम कर रहा तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि तुम्हारे आमाल कबूल हो रहे? अगर आमाल ही कबूल नहीं हो रहे तो हम कहां स्टैंड करने वाले हैं? कहां स्टैंड करने? येल येल इनकलाब लाओ यहां पे। अब फिक्र, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं बोलता फिक्र का इनकलाब लेकर आ जाओ। तुम्हारी अगर ये 10 दिन में सोच बदल गई तो मैं कामयाब हो गया, तुम्हारी फिक्र बदल गई तो मैं कामयाब हो गया, तुम्हारी थिंकिंग बदल गई तो मैं कामयाब। आई एम नॉट टेलिंग यू कि इसी वक्त राइट नाउ इंप्लीमेंट करो, इट्स नॉट पॉसिबल। तू इंसान है, गुनाह होते, लेकिन फिक्र में लाओ, सोच में लाओ, बदलाव लाओ। ये थिंक करो कि यार मैं अब तक क्या कर रहा था, कुछ तो मैं सीरियस हूं अपनी लाइफ में। आप इंसाफ से बोलो, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर, प्लीज गौर से सुनना, किसी ऑफिस में आप काम कर रहे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे, आपके जो एम्प्लॉयज हैं पूरे, उनमें एक एम्प्लॉय अगर सीरियस नहीं है काम में तो एम्प्लॉय रखता है उसको? कभी नहीं रखता। वो बोलता है पोटेंशियल ही नहीं है इसमें, तो इज नॉट सीरियस, ये अपनी जॉब में सीरियस नहीं है, ही लीव्स हिज ओन लाइफ। जैसा हम अब अपनी ओन लाइफ यूज कर रहे, आप अपने लिए नहीं करते, अपनी कंपनीज में उन एम्प्लॉयज को नहीं रखते, यू डोंट कीप इट। मुझे आज तक कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं मिला जो बोला इजी लेके, ठीक है यार वो जिंदगी गुजार रहा ना, कुछ तो कर रहा, आ रहा तो ऑफिस। बोलते आप, बोलते ये बंदा सीरियस नहीं है काम में, उसको निकाल दो, कोई नहीं रखता कंपनी में। बिकॉज आपका इंटरेस्ट है यहां पे कि ये मेरे लिए पोटेंशियल नहीं है, कुछ नहीं कर रहा ये, तो वाई शुड आई कीप हिम? बड़ी प्राउडली बोलते कि वाई शुड आई कीप हिम, क्यों रखूं मैं इसको, ये आदमी 10 आदमी काम कर रहे, ये पोटेंशियल है इसमें इसमें, लेकिन ये सीरियस नहीं है अपने काम में, आप रखते। और इमाम अली के शिया, इमाम अली के पास हमको रहना है। इफ आई एम नॉट सीरियस, मैं सिर्फ वो सीरियसनेस पैदा कर रहा हूं ये 9 दिन में। आई जस्ट वॉन्ट दैट सीरियसनेस। अगर सीरियसनेस आपकी लाइफ में नहीं आती, नहीं आती, तो कोई इंसान कामयाब होता दुनिया में? मैं क्या मांग रहा आपसे? आई एम नॉट आस्किंग यू एनीथिंग, आई वॉन्ट यू टू बिकम सीरियस। किस में सीरियस? अपने रिलीजन में सीरियस, अपनी लाइफ में सीरियस। मैं चाहता कि जितने मोमिनीन है ना, इसलिए कि मुझे मालूम यह मदीस कहां कहां सुनी जा रही, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, पूरी दुनिया सुन रही,
डिफरेंट टाइमिंग्स है, रातों में उठ के सुन रहे, तो सबके लिए बोल रहा। हर आदमी जो जो इमाम अली का शिया अपने आप को बोलता, अपनी लाइफ में वो सीरियसनेस को पैदा करो, तुम्हारी सोच में वो थिंकिंग को बदलो। मैंने दो वाकया बताया आपको कि इमाम अली का इमाम का कैरेक्टर क्या है, हमारा कैरेक्टर क्या है। इमाम बोलते ही नहीं कि मैं कौन हूं, अगर इमाम अली वहां बोलते उसको कि मैं तुझे रोटी जो दे रहा, मैं अली इब्ने अभी तालिब हूं, तो क्या फर्क पड़ता। मौला इतनी है, आप कोई दूसरी बात बोलो, इमाम का एहतियात करना, प्लीज 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 बोल रहा, गौर से सुनो सीरियसली, कितना इमाम एहतियात कर रहे अपनी लाइफ में। मशहूर इंसिडेंट है जंगे खंदक का, मैं जंग नहीं पढ़ रहा, अमर इब्ने अब्दवत कितना बड़ा पहलवान था, पूरा कुफुर, अल्लाह का रसूल का क्या जुमला है जंगे वो खंदक में, कुल्ले ईमान कुल्ले कुफुर के मुकाबले में जा रहा, अल्लाह का रसूल बोल रहा था। इन्हें मौला अली पूरे कुल्ले ईमान है, और अमर इब्ने अब्दवत को गाय कुल्ले को, कुल्ले कुफुर यानी कंप्लीट कुफुर एक जगह जमा हुआ था, उसका नाम अमर इब्ने अब्दवत था। मौला कितने सीरियस है देखो आप, एंड हाउ मच आई एम सीरियस इन माई रिलीजन। मौला अमर इब्ने अब्दवत को मारे, उसको गिराए नीचे जमीन पे, वो जमीन पे लेटा, इमाम अली उसके सीने पे जाके बैठे। अब उस पूरा अरब, यही वो जालिम है कि जिसने रसूल अल्लाह से बदतमीजी की थी, अमर इब्ने रसूल जो अखलाक का मरकज है, उसने क्या कहा था, इस कुत्ते का मुकाबला कौन करेगा। बोले रसूल कभी ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करता, रसूल अल्लाह की लैंग्वेज ऐसी नहीं, लेकिन इतनी बड़ी जालिम ने इंसल्ट की थी तो अल्लाह के रसूल ने गुस्से में कहा कि इस कुत्ते का मुकाबला कौन करेगा, जाओ। तो जब मौला गए, अब आप सुनो क्या वहां जंग नहीं पड़ रहा, अमर इब्ने अब्दवत नीचे लेटा हुआ है, बेहतरीन चांस है, पूरे मुसलमान मुंह खोल के ऐसा देख रहे थे कि अमर को अली ने गिरा दिया, इतनी बड़ी ताकत खत्म हो रही, सब ऐसे मुंह खोल के, सबकी निगाह अली के ऊपर, अली के हाथ में जुल्फ़िकार है, गले पे उसके, मेरी तरफ देखे, गले पे जुल्फ़िकार रखी उसके। अमर इब्ने अब्दुल ने ऐसे मौके पे गुस्ताखी की मौला से, मैं नहीं बोलता क्या, आप जानते लोग, अली सीने से उतर के आ गए, जैसे मौला से ऐसे सीने से उतरे, पूरे मुसलमान उछल गए, रसूल से कहने लगे क्या किया इन्होंने, इतने खतरनाक दुश्मन के सीने से उतर के आ गए। रसूल जानता है दोनों का मिजाज एक, दोनों का लहजा एक, दोनों की थिंकिंग एक, अल्लाह का रसूल तो जानता है कि क्यों हटे। मुसलमान बैठा हुआ मुसलमान खड़ा हो गया, खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह गजब हो गया कि अली ऐसे खतरनाक दुश्मन के सीने से उतर के आ गए, फिर ऐसा मौका मिलेगा। उसके बाद मौला ने उसको कत्ल कर दिया। जब उसका सर लेकर वापस आए तो पहला सवाल पूरे मुसलमानों ने घेर के कहा, या अली जंग की इतनी बड़ी गलती की तुमने, जंग करने के जो उसूल है उसमें दुश्मन के सर सीने पे बैठकर तुमको उतरना, इससे बड़ी गलती क्या है, अगर वो बाद में हमला कर देता तो क्या होता हमारा। अल्लाह के रसूल ने पूछा, अल्लाह का रसूल तो जानता था कि या अली तुम हटे क्यों सीने से। तो अब मौला का कैरेक्टर देखो यार, कैरेक्टर देखो, अली के बारे में सोचना जरा सा भी पॉइंट 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 0% भी अगर कोई जहन में कोई खिलाफ आए ना, वो कुफुर हो जाता। अली से रसूल ने पूछा, या सब सुन रहे, या अली तुम उतरे क्यों उसके सीने से, तो कहा या रसूल अल्लाह जब मैं उसका सर खलम करना चाह रहा था, उसने मुझसे गुस्ताखी की, बदतमीजी की, मैं नहीं बोलता, सब जानते क्या गुस्ताखी की, उसने गुस्ताखी की, वो एक लम्हे के लिए मुझे गुस्सा आया, तो मैं अगर उस वक्त तलवार चलाता तो अपने नफ्स को शामिल करता। क्या बोलो आप, इतना खामोश सुनते रिजवी कॉलेज में, आई कांट बिलीव। इमाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह एक सेकंड के लिए मेरा पर्सनल इंटरेस्ट आ गया, तू मुझसे गुस्साखी क्या, मैं तुझे, और ये भी मैं नहीं चाहता जब मैं अल्लाह के लिए कोई काम करूं तो अपना इंटरेस्ट मिला उसमें। ये कैरेक्टर है हमारे पास। अल्लाह तो सेकंड थर्ड पीछे कहां खड़ा हुआ है नहीं मालूम हमारे। सबसे पहले तो मैं हूं, मेरा क्या है आबिद, मैं अपने को बार बता, किसी और को क्यों मालूम, मेरा क्या इंटरेस्ट है बाबा। अल्लाह तो बेचारा कहां खड़ा हुआ है नहीं मालूम। मेरा इंटरेस्ट है, मेरा नाम हो रहा बॉम्बे में, इंडिया में, तो देन आई एम गोइंग टू डू। क्या फायदा 0.1% भी अली के कैरेक्टर की हमारे पास झलक नहीं दिख रही, फिर मोमिन अली, फिर इमाम अली के मोमिन, फिर इमाम अली के शिया। याद रखो, जो कुछ तुम कर रहे, जो कुछ हम इस दुनिया में कर रहे, ये हर चीज दुनिया में तुम्हारी रह जाएगी। तुम्हारी मदद कौन करने वाला है वहां पे? एक चीज फिर बोल रहा, ओपन बोल रहा, चार दिन हूं रिजवी कॉलेज में इंशाल्लाह। विदाउट कोई शख्स नमाज रोजा हज ज़कात होम्स इसके जरिए जन्नत में नहीं जा सकता। निकालो जहनों से, अगर कोई नमाज में पढ़ के बोले मैं खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, किसी वाजिब को कम नीचे नहीं कर रहा, आई डोंट मीन दैट, डोंट मिसअंडरस्टैंड, वाजिब वाजिब है अपनी जगह पर, लेकिन अगर तुम्हारे दिमागों में यह भरा हुआ है कि मैं नमाज तो पढ़ रहा, मैं रोजे तो रख रहा, मैं खुम्स तो दे रहा, मैं डोनेशन तो दे रहा, मैं इससे मेरी बख्शिश होगी, आई डोंट नीड इमाम अली, तो देन जस्ट फॉरगेट इट, जस्ट फॉरगेट इट। इमाम अली की शिफात के बगैर कोई जन्नत में जा नहीं सकता। यू अंडरस्टैंड ना? इमाम अली, निकालो जहनों से, एक सजदा भी कबूल हो ही नहीं सकता जब तक शिफात अमीर अल मोमिनीन ना हो जाए। तुम्हारी सांस जो चल रही ना, वो सदका है इमाम अली के बेटे का। शिया बनो बाबा, शिया बनो, रियल शिया बनो। हम सलमान से बड़े इबादत गुजार नहीं है, हम मीसम और अबूजर से बड़े इबादत गुजार नहीं है। हमारी इबादत ही क्या है? नाखिस इबादत को, इन्हें कमजोर वीक इबादत हमारी, उस वीक को स्ट्रांग जो बनाएगी ना, वो विलायत अली बनाएगी। यू अंडरस्टैंड ना? वरना हजारों करोड़ों मुसलमान, 1 बिलियन मुसलमान है, 1 बिलियन मुस्लिम्स है इस वक्त, हज भी कर रहे, उमरा भी कर रहे, नमाज भी पढ़ रहे, रोजे भी रख रहे, तरावी भी पढ़ रहे। क्या बोला मैं? नहीं
करके नारा,
सब कर रहे, एंड देन यू थिंक विदाउट इमाम अली कोई जाएगा जन्नत में? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। शिफात मौला लाजिम है, तो थोड़ा तो कैरेक्टर अपने पास लाओ। तीन चीजें मैंने आज बताई आपको कि कैरेक्टर ऑफ इमाम अली ये है। मैं सिर्फ यही बोलता, आपको हाथ जोड़ के यही बोलता हूं कि 9 दिन की मेरी मेहनत को जाया मत करो, सिर्फ सोच बदल लो। रोज 5 मिनट सोचो कि मैं इमाम अली का शिया बनना चाहता, तो आई हैव टू लीव दिस 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 थिंग। ये मैं को निकालो अपने पास से, ये चीज को निकाल दो। मौला ने कैसे काम किया? रोज हेल्प कर रहे, नाम नहीं बोलते, तो आज से ये डिसाइड करो इस फर्शेजा पे बैठकर कि आज के बाद मेरा जो डोनेशन जाएगा बंदे खुदा पे जाएगा, जो मैं किसी की मदद करूंगा बंदे खुदा पे मदद करूंगा। एक आदमी भी डिसाइड कर ले तो मैं कामयाब हो गया। मैं लड़कियों से और लड़कों से बोल रहा हूं कि व्हेन यू गिव डोनेशन, ये डिसाइड कर लो इमाम अली को ये तोहफा दो कि मौला मैं अपने नफ्स को शामिल नहीं करना चाहता, अपना नाम देके मेरा नफ्स शामिल ना हो, हो सकता शैतान मेरे जहन में डाले, शेख मुर्तजा अंसारी के डाल सकता, शेख मुर्तजा अंसारी जैसी पर्सनालिटी उनके जहन में शैतान डाल सकता कि तुम इतनी बड़ी नमाज पढ़ने जा रहे, इतने लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, तो हम किस गिनती में, हम कहां से स्टैंड करेंगे? आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। जो शेख इमाम जमाना से डायरेक्ट मिले, جو شیخ زمانے کے امام کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے، میری مجبوری کہ میں ان علماء پہ میں نے پڑھا، اب کچھ نہیں زیادہ نہیں بول سکتا، میرا وقت نہیں ہے میرے ساتھ، اور ہم صرف بندے خدا، میں آج سے میں ریکویسٹ کر رہا کہ تم ایک روپیہ دو، ایک لاکھ دو، صرف بندے خدا لکھو، تو کم از کم ایک صفت تو مولا علی کی آتی ہماری لائف میں. دوسری چیز، کوئی عبادت میں یہ مت سوچو کہ میری عبادت بڑی، وہ چیز کو نکالو جہاں اپنا انٹرسٹ رہا، نامی نہیں. یہ ایک پہلی چیز. اب تیسری چیز میں بتاتا ہوں کہ امام علی کے چاہنے والے اگر بننا ہے تو لوگوں پہ بات مت کرو. میں افسوس سے کہہ رہا، آپ سنو، یہ کیریکٹر ہمارے پاس ہے نہیں ہے، آپ خود ڈیسائیڈ کر لینا. ہم کہیں جا رہے ہیں شادی میں، کوئی پارٹی میں جاتے، کوئی ڈنر میں جاتے، کسی کے پاس کوئی انوائٹ کرتا، کھانے پہ جاتے، کھانے پہ بیٹھے اسی کے گھر میں، کھانا کھائے، کھانا کھا کے وہیں بیٹھ کے بول رہے سالن میں نمک کم تھا. شیم بابا شیم. تم یہ امام علی کے چاہنے والی کی صفت ہے؟ جسٹ ٹیل می. ایک آدمی تم کو محنت کر کے انوائٹ کیا اپنے گھر میں کہ جسٹ ہیو ڈنر ود می، اس نے صبح سے شام تک محنت کر کے اس کی وائف نے پکایا، اسی کے گھر میں بیٹھ کے، اسی کے ڈائننگ ٹیبل میں بیٹھ کے، اسی کا کھانا کھا کے، جیسے ہی وہ ٹیبل سے ہٹا مزے کا نہیں تھا. How can you be امام علی شیعہ؟ کیسے؟ میں روتا. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ انسان کہاں جا رہا، ویئر وی آر گوئنگ. یقین کرو تم کو اندازہ نہیں، تم سوچ رہے نہیں کہ کیا حشر ہونے والا ایسے لوگوں کا کہ تم اس کے گھر میں بیٹھ کے، یہ نہیں ہوتا کامن. مجلس میں آتے، مجلس میں بیٹھے ہوئے اور بانی مجلس کے خلاف اس کی اگر کوئی بری بات کسی کو نظر آئی، اس لیے کہ میرے ساتھ ہوا، میں ایک جگہ مجلس پڑھا، میں نام تو نہیں بولوں گا، ایک بہت بڑی شخصیت تھی، ان کے گھر میں نے مجلس پڑھی، مجلس پڑھی، مجھے نہیں معلوم کچھ، آج سے چار سال پرانی بات کر رہا، وہ لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے اس وقت. مجلس پڑھ کے میں لفٹ سے نیچے اترا، اس بندے نے کہا مولانا کیا مجلس پڑھی، پورا یہ مجلس اس کے اوپر فٹ ہوئی. حرام نہیں ہے؟ تم کو اس نے مجلس میں بلایا تھا، تم کو اس نے نیاز دی تھی، تم کو عزت سے بلایا تھا، ریسپیکٹ دے کے بلایا تھا تم کو کہ یو کم ٹو مائی پلیس. اتنی منافقت، اتنی ہپوکریسی، پھر امام علی کے مومن آپ اس کے گھر میں مجلس میں بیٹھ کے، اس کے گھر میں بیٹھ کے کھائے، نیاز لے کے جا رہے، پوری مجلس اس کے بہت اچھا ہوا. ارے میں روتا ہوں، ریئلی آئی کریئلی آئی سے آئی ٹیل یو آئی کرائی، میں روتا ہوں کہ یہ کہاں ہے ہماری کمیونٹی، ہم کیسے امام علی کے اور کتنا ریلیکس ہے، کتنی غفلت ہے، بندہ اتنے سکون میں ہے کہ امام علی کے شیعہ رہو مت رہو، نام ٹیگ تو لگا ہوا ہے نا شیعہ کا، شیعہ کے ٹیگ سے کوئی بخشا نہیں جائے گا، عمل سے بخشا جائے گا. یو انڈرسٹینڈ؟ امام علی کے صرف ٹیگ لگ جائے کہ میں ان کا شیعہ ہوں، مولا بول دے تو نہیں ہے میرا تو میں کیا کروں گا. تمہارا کیریکٹر بتانا، تمہارا کردار بتانا. ہر آدمی کے، آپ ایک آدمی سے بیٹھ کے بات کرو دوسرے آدمی کے تعلق سے، آپ دیکھو میں پورے جو نفسیاتی باتیں وہ باتیں کر رہا. ایک آدمی، ایک مومن دوسرے مومن کے بارے میں آپ بات کرو، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا، پوری اس کی ہسٹری سنا دے گا. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ابھی سب لوگ بیٹھے تھے، میں خاموش بیٹھ گیا، میں ان سے اکیلے میں بات کرنے والا ہوں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اپنے اعمال کو. یعنی 60+ یہ ایج ہے تمہاری یہ حرکتیں کرنے کی، پورے اعمال کو خراب، پھر تم امام علی کے شیعہ بولتے ہیں؟ How can it be؟ اتنا ہم کو کام کرنا نہیں ہے دین کے لیے. میں اتنے بڑے مجمع سے رضوی کالج میں پوچھ رہا کہ اب تک اپنی لائف میں امام علی کے لیے کیا کام کیا، کیا پروپوگیشن کیا. نہج البلاغہ سب کے پاس رکھی ہوئی ہے، کتنے تم نے امام علی کے سیئنگز کو व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भेजा। कल मैंने सोशल मीडिया पे बहुत डिटेल में बोला था, एंड आई सेड कि आई एम गोइंग टू स्पीक अगेन टुडे। इमाम अली के मोमिन है ना, खंबर मिमीसम का कैरेक्टर क्या था? जितने मौला के चाहने वाले थे बड़े शिया, जो रियल शिया थे, वो लोग घरों में बैठ के मौला की हदीसों को घरों में बैठ के नहीं बोले। इवन कल मैंने बताया, इवन झाड़ पे दार पे चढ़ने के बाद भी उन्होंने प्रोपोगेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ इमाम अली की। वो कैरेक्टर हमारे पास है, हमारे पास टाइम नहीं है। फेसबुक व्हाट्सएप पे जरूर रहो, फेसबुक पे जाके दूसरों को सर्च मत करो। अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर से बोल रहा, कल की मेरी स्पीच के बाद 4 या 5 लड़कियों के फोन है, व्हाट्सएप है कि मौलाना हमने पिक्चर्स को निकाल दिया अपने प्रोफाइल पिक्चर को, एंड वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग सीरियसली नाउ कि इमाम के सेइंग्स को, मौला हुसैन की सेइंग्स को। एंड शी वॉज आस्किंग मी कि नहजुल बलागा में सेइंग्स कहां है। नहजुल बलागा जो किताब है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट जो नहजुल बलागा का फर्स्ट पार्ट है वो सरमन्स है मौला के, सेकेंड पार्ट में लेटर्स है, थर्ड पार्ट में सेइंग्स है, लास्ट जो पार्ट है नहजुल बलागा का उसमें सेइंग्स ऑफ इमाम अली है। तो वो उन लोगों ने, उन लड़कियों ने कहा, मौलाना जस्ट गिव अस, कहां है नहजुल बलागा में? हम ये कम से कम ये 9 दिन में, 3 दिन और बाकी है, 3-4 दिन, ये 4 दिन में एटलीस्ट 3-3, 4-4 सेइंग्स को निकाल के हम जो है लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में हर तरफ भेजेंगे। कल की मजलिस के बाद 4-5 लड़कियां कहती कि हमने फेसबुक से अपने पिक्चर को हटा दिया, व्हाट्सएप से अपने पिक्चर को हटा दिया। क्यों हटाया? डर के हटाया। कहा रात में सोए नहीं कि अगर मौला बोल दे कि तू मेरी कनीज नहीं है तो मैं कहां जाऊंगी। ये इनखिलाफ चाहता था मैं, हुआ। मैं आपसे चाहता, ये यूथ को बोलता, गफलत में मत रहो, इग्नोरेंस में मत रहो। इमाम अली के मोमिन बनना है तो कोई आदमी इग्नोरेंट नहीं रहना, ऐसे ही जिंदगी गुजारना। हमारी लाइफ कैसी रहना? जैसा इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए। अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए तो इंसान कितना अलर्ट रहता, कितना अलर्ट रहता। तो वैसे अलर्ट रहना 24 घंटे हर मोमिन, हर मोमिन 24/7 अलर्ट रहना कि कहीं कोई हमला ना हो जाए, कहीं मेरा ईमान चोरी ना हो जाए। आखिरी जमाने के साइंस में ये लिखा हुआ है, सारी किताबों में लिखा, रहायतुल खुलूब में लिखा हुआ है, साइंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम, ये भी इंग्लिश में आ गई तालिब जौहरी की, और तारीख इस्लाम 14 सितारे जो हर घर में है वो भी इंग्लिश में आ गई। जाके मेरी रिक्वेस्ट है, बाहर जाफी पब्लिकेशन में है वो 14 सितारे, इंग्लिश में है, यूथ खरीदे किताब, वो खरीद के बैक पेज पे जाए लास्ट में, जो इमाम जमाना के साइंस ऑफ रीअपियरेंस है उसमें जाके देखो, जितनी बातें मैंने आज की और अब तक किया, ये पूरे बातें उस साइंस में कि आखिरी जमाने में मोमिन की हालत क्या होगी। आखिरी जमाने खाली बैठ के बोलने से नहीं होता मोमिन। मोमिन यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, यू डोंट नीड टू प्रूव मी, यू हैव टू प्रूव योर इमाम, यू हैव टू प्रूव योर इमाम। उसके बाद ये साइंस देखो जाके, उसके बाद देखो कि क्या हम अली के शिया बनने के काबिल है। रिस्क हराम मैंने बोला, आज एक ही जुमला बोला, कल इसकी डिटेल में जाऊंगा कि रिस्क हलाल अगर नहीं आएगा जबान पर, इसलिए कि कल गाजी अब्बास का जिक्र होगा, तो मौला अब्बास के ऊपर जब बोलूंगा, तो जब बोलूंगा रिस्क हलाल, मैं औरतों को बोल रहा, औरतों को बोल रहा कि आज जो प्रॉब्लम्स तुम्हारे घरों में इस वक्त है, आई नो कितने में मिंबर है रसूल से बोल रहा मिंबर, आज जैनबिया की मस्जिद पढ़ने के बाद शाम में, आज वहां लेडीज की मेहंदी होती, कई 100 मोमिनात रहते जो मेहंदी करने आते। मैं जैसे ही बाहर निकला, यंग लड़कियों का ग्रुप आया वहां पे, दे सेड कि मौलाना वी वर वेटिंग फॉर यू कि आपसे मुलाकात होगी। आप यकीन करो दोस्तों, मैं मिंबर से 7 मुहर्रम की रात की मजलिस में बोल रहा, आज सिर्फ बोल रहा, वक्त हो गया मेरा, कल इसकी डिटेल में जाऊंगा। ये सबसे बड़ा इश्यू, एज क्या होगी बच्ची की, वो यंग गर्ल 22-23 की होगी, 6 महीने हुआ शादी हो गए और उसके हस्बैंड ने उसको भेज दिया,
कैन यू इमेजिन, मां का प्रेशर पड़ा, लड़के ने बीवी को 4 महीने मैरिड लाइफ 4 मंथ्स रही। मैं पूछता यार इमाम अली के शिया है, तुम्हारा माहौल ये है इस वक्त? ये एक केस नहीं है बॉम्बे का, दुनिया में मिंबर से बोल रहा, पूरी दुनिया में, पूरा इंडिया घूमता हूं साल भर, जिस जगह पे इंडिया में मैं जाता हूं आज मेरे को 4-5 केसेस सामने आते। अभी मैं जैनबिया की बात कर रहा, अब इससे ज्यादा मैं आपसे क्या बोलूं, इतनी छोटी बच्ची 22-23 साल की लड़की, उसके दिल पे क्या गुजर रही, उसके मां के क्या गुजर रही, उसके बाप के क्या गुजर रही। देन वी आर मूविंग, पहली सब में खड़े हुए, आजादारी में सबसे आगे, बैठ के ड्राइंग रूम में बात करने में सबसे बड़े मोमिन, और हमारे चेंज कितना आ रहा है। मैं उन मां से भी बोल रहा जो मदर इन लॉ बने हुए हैं, जुल्म अली कभी बर्दाश्त नहीं करता, याद रखो। अली की हुकूमत में, इमाम अली की लाइफ में 0.1% का 0.0% भी जुल्म अली से नहीं हो सकता। अली उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा जो किसी के ऊपर जुल्म करेगा। आज मैंने हेडलाइंस दी है, कल इसकी डिटेल में आऊंगा कि इमाम अली का शिया होने के लिए या कनीज़े अली बनने के लिए, आप क्या समझ रहे, इमाम अली राजी नहीं है तो बीबी ज़हरा राजी होंगी उससे? मुहर्रम की मजलिसों से फायदा क्या हो रहा? उन लड़कियों के दिल से पूछे, लिटरली मार रहे यार, तुम हाथ उठा रहे, हाथ बुलंद कर रहे लड़की के ऊपर, उसको घर से निकाल दिया, वो घर आ गई अपने पति 4 महीने की शादी में घर आ गई। मौलाना गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग, सम दुआ। मैंने कहा ये 3 दिन में क्या दुआ दूं यार, फिर मैं गुलिस्तान का अरशा जब पढ़ने आऊंगा तो जब दूंगा। ये 3 दिन मौला हुसैन से बोलो तुम्हारी शादी बचा ले। बोलती है मौलाना आप बोलो मैं कहां जाऊंगी, अच्छी घर की फैमिली, डिसेंट फैमिली, पढ़ी लिखी लड़की, जाहिल लड़की भी नहीं, मास्टर्स करी हुई या कर रही है या करी हुई थी। उसने कहा था कि मैं ग्रेजुएशन करके मैं MBA में, मुझे ये याद नहीं है कि वो कर लिया कर रही, इसी तरह कुछ बोली थी। पढ़ी लिखी बच्ची, डिसेंट फैमिली, क्लीन फैमिली, नीट फैमिली, और तुम बच्ची को 4 महीने में बोले गेट आउट विदाउट एनी रीजन? ये लाइफ है, ये शिया है, ये मोमिन है? फिर इमाम अली मौला मैं आपकी सबसे ज्यादा चाहने वाली, फिर ये नजर है वो नजर है, ये है वो है, फायदा क्या यार, फायदा है? ये इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या होगी? उन मदर इन लॉ को भी बोलता कि जो प्रेशर करके जुल्म कर रहे, जुल्म करोगे तुम चूंटी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते, एंड के ऊपर, एंड, एंड की क्या वैल्यू है? चलते चलते 10-20 एंड को तो तुम्हारे पैरों के नीचे तुम मार देते, लेकिन उसी चूंटी को तुम गर्म पानी से नहीं मार सकते, आग में नहीं डाल सकते, जुल्म नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप यहां बैठे हुए और एंड सामने से जारी, आप बैठे हुए चूंटी सामने से जारी, अगर आप आगे बढ़ के आपको आप उसे मार दे, मारना क्या यूं करना है बस, मार दे विदाउट एनी रीजन, आप चूंटी जारी, आपको तो कोई हार्म नहीं करी, वो जारी चले जाने दो उसको। अगर तुम ये करोगे इतनी छोटी सी अल्लाह की मखलूक से, क्यों तुम ताकतवर है, वो ताकतवर नहीं है ना, इसलिए तुमने किया ना। ये हमेशा याद रखो, हर ताकतवर के ऊपर एक और ताकतवर है। अगर मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूं तो मेरे ऊपर भी कोई ताकतवर है। अल्लाह जालिम के ऊपर जालिम को नाफिज कर देता, आप समझ रहे मेरी बात? तो अगर तुम ये समझ रहे कि मैं चूंटी पे आप जुल्म नहीं कर सकते, तो ये तो इंसान है, ये तो कनीज़े जहरा है, कनीज़े अली है, कनीज़े बीबी जैनब है, तुम उसके ऊपर जुल्म कर रहे। तुम ईमान से बोला अगर तुम किसी को घर से भेज दे, लड़की को भेज दे कि जाओ तुम अपने मां बाप के पास, फिर तुम नमाज पढ़ रहे या तुम आजादारी करे, तो तुम्हारी नमाज कबूल हो रही? मोमिन का दिल, मौला अली से पूछा गया था जमीन और आसमान का डिस्टेंस क्या है, आज साइंस भी नहीं बताती कि जमीन और आसमान का डिस्टेंस क्या है। इमाम अली से पूछा गया कि जमीन और आसमान का डिस्टेंस क्या है, यू नो इमाम अली ने क्या कहा था? इमाम अली ने कहा था कि जमीन और आसमान का डिस्टेंस एक मोमिन के दिल की आह है। जब तुम किसी को तकलीफ देते, उसको जो पेन होता वो पेन
پین جو ہے عرش الہی پہ جاتا ایک سیکنڈ میں، اور جب واپس آتا تو عذاب الہی لے کے آتا تمہارے اوپر. یہ یاد رکھو، کسی کو آپ ہرٹ نہیں کر سکتے. امام علی کا شیعہ سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ میرا کیریکٹر ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میرے مولا کے اوپر بات جائے. کل کوئی بولے کہ علی کے چاہنے والی ایسی ہے کہ گھر سے باہر نکال دی، دوسرے مذہب کے لوگ، اس لڑکی کے دوست ان سے پوچھے کہ بابا تم کس ریلیجن کے ہو، شیعہ، وہ جا کے باہر بولے کہ شیعوں میں تو یہ ہوتا کہ چار مہینے میں بچی کو باہر بھیج دیتے، تو شیعت کہاں گئی؟ بس مولا آباد رکھے، باواز بلند سلوات پڑھے. ایک اور پڑھ لے باواز بلند. باقی باتیں کل انشاءاللہ. اللہ ہم کو امام علی کا شیعہ بنا دے، ہم مولا کے راستے پہ صراط مستقیم پہ رہیں. بس میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں، لڑکے لڑکیوں سے، صرف اپنی سوچ کو بدلو مجلسوں کے بعد. خالی فکر کرو، پانچ منٹ بول رہا میں، 24 آورز میں پانچ منٹ نکالو کہ میں بول رہا ہوں، میں صحیح بول رہا یا غلط بول رہا. میں امام علی کی اس ٹیچنگز بتا رہا آپ کو. بس یہ سوچ آ جائے نا، خود بخود تم ڈیولپ کرو گے، آٹومیٹک تم چینج ہو جاؤ گے. یہ سب سے بڑا تمہارا اچیومنٹ ہے کہ تم اپنے دور کے علی کے شیعہ بن جاؤ. دوستو میں نے شادی کا بھی اس لیے چھیڑا آج کہ آج ہر عزا خانے میں ایک ایسے شہید کا ذکر ہے جو کربلا کا دولہا ہے. آج 6 محرم کی رات، شب 7 محرم ہے. یہ رات ڈھل جائے گی، صبح جب ہوگی، پہلی مرتبہ جب تم پانی کو دیکھو گے تو ضرور حسین کے بچوں کی پیاس یاد آئے گی. آج 7 محرم کی رات ہے، ہر طرف سبیلیں سجی ہوئی ہیں. یہ ان بچوں کی یاد میں ہے کہ جو بچے خالی کوزہ لے کے 3 دن سے پھر رہے تھے. آپ کو معلوم ہے پانی تو 2 محرم کو جب خیام حسینی ہٹایا گیا اسی وقت بند ہو گیا، اسی وقت پانی بند ہو گیا. 7 محرم سے تو کی صبح سے تو ایک ڈراپ پانی نہیں تھا، ایک خطرہ پانی حسین کے کیمپس میں نہیں تھا. بچوں کی پیاس کا یہ عالم تھا، بچوں کی پیاس کا یہ عالم تھا کہ بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے تھے. دوستو آج اپنے بچوں کو بتانا، گھر جا کر اپنے اپنے بچوں کو بولنا، بیٹا کل جب صبح میں پانی دیکھنا تو ضرور حسین کے بچوں کی پیاس کو یاد کرنا، ضرور علی اصغر کی پیاس کو یاد کرنا، ضرور سکینہ کی پیاس کو یاد کرنا کہ کس طرح حسین کے بچے پیاسے تھے. آج وہ پیاس دوستو میرے مولا حسین کا جملہ ہے اس ذاکر سے کہ جو ذاکر حسین کے مصائب کربلا میں پڑھتا تھا. اللہ ہم کو بھی کربلا کی زیارت نصیب ہو. مولا کے روزے میں ایک عربی ذاکر تھا، روز ذکر حسین کرتا تھا. ایک دن شب میں خواب میں میرا مولا آیا، آ کے کہنے لگا ذاکر تو میری جو مصیبت ہے اس کو بیان نہیں کرتا. اس نے کہا مولا میں یہ بیان کرتا کہ آپ نے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، یہ بیان کرتا کہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے، اون و محمد کی میتیں اٹھائیں، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھایا، اور علی اصغر کے لیے پانی مانگا لیکن بچہ ذبح ہو گیا. تو امام کہتے ہیں کہ بے شک یہ ساری مصیبتیں ہیں، ایک مصیبت ایسی ہے جس کا تو ذکر نہیں کرتا. تو امام نے جب کہا تو ذاکر نے کہا مولا آپ ہی ارشاد فرمائیں. تو اس وقت حسین نے کہا ذاکر میرے لیے اتنی بڑی مصیبت ہوتی تھی جب میں خیمے کے اندر جاتا، سارے بچے مجھے گھیر لیتے، ان کے ہاتھوں میں خالی کوزے ہوتے، حسین ساقی کوثر کا لال ہے، تڑپ کے کہتا کہ ہائے بچوں تمہاری پیاس میں کیسے بجھاؤں. کبھی سکینہ آگے بڑھتی، کبھی دوسرے بچے کہ بابا پیاس مارے ڈالتی. آج ایک ایسے شہید کا ذکر ہے دوستو کہ جو کربلا کا دولہا ہے. یہ عجیب حسین کے گھر کی شادی تھی، کہ دولہا بھی پیاسا تھا، دلہن بھی پیاسی تھی، سارے باراتی پیاسے تھے. آپ اندازہ لگائیے، جب ہم کسی کی شادی میں جاتے ہیں تو دولہے سے گلا ضرور ملتے ہیں، جا کے اس کو گلے مل کے اس کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن آج کے دولہے سے گلے نہیں ملنا، اس لیے کہ اس کا لاشا پامال ہو چکا، جسم کے ٹکڑے ہو گئے. عزیزو، جب شب عاشور آئی، آج ایسا پرسا تو صرف کتنی راتیں رہ گئیں؟ دو راتیں، سات اور آٹھ. پھر جب نوی پرسوں کی رات آئے گی تو وہ فاطمہ کے لال کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہوگی. اللہ ہم سب کو کربلا جانا نصیب ہو. پھر اتنے زائرین میرے سامنے بیٹھے ہوئے، جب کربلا جاتے ہیں زائر، ایک ایک خیمہ گاہ میں جب جاتے ہیں آپ، سب سے پہلے مولا عباس کا خیمہ، پھر شہزادے علی اکبر کا، چوتھے امام کا، مولا حسین کا، بی بی زینب کا، ان تمام خیموں میں جا کر جب ایک خیمے میں اندر جاتے ہوئے تو وہاں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں سہرے لٹکے ہوئے، سہروں کو دیکھ کے پتا چلتا کہ یہ دولہے کا خیمہ ہے، یہ حسن کے یتیم کا خیمہ ہے. عزیزو، شہزادہ کی یہ مہندی اتنی مقبول ہے پوری دنیا میں، یہ نہیں ہے کہ صرف سب کانٹیننٹ میں، عرب میں، میں تو پوری زندگی میری عرب میں گزری، سات محرم کو ہر شہر میں جہاں جہاں مومنین ہیں وہاں شہزادے کی مہندی اٹھائی جاتی. کربلا میں سات محرم کو سیرے لٹکے ہوئے شہزادے قاسم کے خیمے میں، کسی اور خیمے میں نہیں. یہ حسن کا یتیم اتنا بہادر تھا، اتنا شجیع تھا کہ اور جنگ کرنے کی اتنی خواہش تھی، اسی لیے سب سے زیادہ سخت ترین جنگ کا مصیبتیں قاسم پہ آئی. آج اس شہید کا ماتم، قاسم اس شہید کا نام ہے جس کو زندگی میں پامال کر دیا گیا. آپ نے کتنی آسانی سے سن لیا، یہ میں نے کتنی آسانی سے بیان کر دیا. آپ کو معلوم پامالی کسے کہتے ہیں؟ شہزادہ بیٹھا ہوا تھا میدان میں اور گھوڑوں کا دوڑنا اور شہزادے کا پکارنا، زندگی میں میرا شہزادہ پامال ہو گیا. عزیزو، وہ لمحہ جب آیا، شب عاشور آئی اور حسین فہرست سنا رہے تھے شہدا کی کہ کل یہ لوگ شہید ہوں گے، جب انصار کو سنا کے اون محمد تک کے بات آئی تو قاسم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے چچا کیا میرا نام نہیں ہے اس میں؟ تو حسین نے پوچھا بیٹا کل کے دن موت کیسی ہے تمہارے لیے؟ تو کہا چچا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو امام نے کہا بیٹا قاسم تمہارا نام بھی ہے اور تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. عزیزو، علی اصغر کا نام سنا، حسن کا خون، فاطمہ کا خون رگوں میں دوڑنے لگا. غیرت دار شہزادے نے کہا چچا کیا اشقیا خیمے میں آ جائیں گے؟ میں کہوں شہزادے آہستہ بولو، کہیں یہ جملے زینب نہ سن لے. شام غریبہ میں جب دشمن آئیں گے تو زینب پکارے گی قاسم تم کو گوارا نہیں تھا، آ کے دیکھو خیمے جل رہے. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو. کربلا کے دولہے کا ماتم ہے، یہاں بھی مہندی اٹھے گی انشاءاللہ. مہندی کے ساتھ ساتھ رہنا، پتہ نہیں اس مہندی کے پیچھے ہو سکتا اس دولہے کی ماں ام فروا بھی چل رہی ہو، ہو سکتا بی بی کبرا بھی ہو، ہو سکتا میرا مولا حسن مہندی کے ساتھ ہو. کہ میرے بچے کی مہندی اٹھانے والوں، اللہ تم کو سلامت رکھے، فاطمہ کی دعا تمہارے ساتھ. وقت گزرا، عاشورے کا دن آیا، انصار شہید ہوئے، اون محمد کے لاشے خیمے میں آئے. ام فروا نے کہا بیٹا ابھی تک گئے نہیں. تو شہزادے نے کہا کہ اماں چچا اجازت نہیں دیتے، جب میں جا کے کہتا ہوں چچا کہتے ہیں کہ بیٹا تم میرے بھائی کی نشانی ہو، کیسے اجازت دو؟ عزیزو، اس وقت بی بی نے کہا کہ بیٹا اس تعویذ کو کھولو، اب اس سے زیادہ مصیبت کا وقت اور کون سا ہوگا. تعویذ کھولی گئی جو امام حسن نے بازو باندھا تھا، तावीज जब खोली तो वो तावीज नहीं थी बल्कि भाई को भाई का नाम खत था। हसन का खत हुसैन के नाम पे था। हसन ने लिखा था कि भैया हुसैन रोजे आशूर में नहीं रहूंगा, मेरी तरफ से मेरे बेटे खासिम को इजाजत दे देना। अजीजों खत लेकर जब खासिम हुसैन के पास गए, हुसैन ने भाई की तहरीर को देखा, भाई के लेटर को देखा, भाई का जमाना याद आया, भाई की मोहब्बतें याद आई। हुसैन रोने लगे, कहने लगे बेटा तुमने मुझे मजबूर किया। खासिम का हाथ पकड़ा, खैमे में आए, उधर से जैनब ने कुबरा को लेकर आए। यह हुसैन के घर की अजीब शादी थी कि दूल्हा और दुल्हन दोनों प्यासे। अजीजों खासिम मसनद से उठे, जब जाने लगे तो उम्मे फरवा ने रोका, मां ने रोक के कहा बेटा मैदान में जा रहे हो, एक चीज याद रखना, मैदान में जाना तो वापस नहीं आना, रोजे मैशर फातिमा को सूरत बताना है। अजीजो हसन का यतीम आया शानदार जंग की। जब आया तो उमर साद ने कहा, अर्जक से कहा कि जा और खासिम का मुकाबला कर। तो अर्जक अरब का बहुत बड़ा पहलवान था, एक ताकत का नाम था अर्जक। अर्जक ने कहा कि मेरी शान के खिलाफ है, मैं इस बच्चे के इस मुकाबले में जाऊंगा, मेरे सात बेटे हैं, कोई एक बेटे को भेजेगा और वो खत्म कर देगा। कितना गुरूर था। जब वो आया एक बेटा, खासिम ने उसको वासिले जहन्नम किया। दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, सातों बेटों को हसन के यतीम ने वासिले जहन्नम किया। जब सातों बेटे खत्म हो गए, अर्जक की आंखों में खून उतर आया। वो खासिम के मुकाबले के लिए आया, इतनी बड़ी ताकत का नाम अर्जक था। वो आया, खासिम का सिन 13-14 बरस का, जैसे ही अर्जक आया अब्बास खैमे से बाहर आ गए, इसलिए कि शागिर्द है खासिम अब्बास के। अब्बास ने कहा कि बेटा घबराओ मत, बेटा बेटा जंग लड़ो। शहजादे ने ऐसा वार किया कि चंद लम्हों में अर्जक का सर खासिम के हाथ में था। अब्बास दौड़ते हुए मैदान में गए, खासिम को सीने से लगाया, लगा के कहा बेटा खूब जंग की, बाबा की जंग याद आ गई। बस अजीजों मैंने मजलिस खत्म कर दी। खासिम इतने हसीन थे कि हुसैन ने एक हल्का सा कपड़ा डाल दिया था कि कहीं मेरे बच्चे को नजर ना लगे। जब लड़ रहे थे तो हवा से कपड़ा हटा, दुश्मन ने कहा कितना खूबसूरत है, कितना हसीन है। अरे जो दुश्मन की निगाह में हसीन हो वो मां की निगाह में क्या होगा। लड़ता हुआ हसन का यतीम जब घोड़े से जमीन पर आया, हुसैन तलवार लेकर आगे बढ़े, करबला का दूल्हा हाथों को टेक के चचा का इंतजार कर रहा था। इधर के घोड़े उधर होने लगे, खासिम पुकारने लगे कि चचा मेरी मदद को आइए, चचा मेरी मदद को आइए। हुसैन पहुंचे तो लाश के टुकड़े हो चुके थे। हुसैन ने सर पीटा, कहा खासिम हुसैन शर्मिंदा है कि मैं तुम्हारी मदद को नहीं।